वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन तीन विचारधाराएं। विज्ञान ने यूरोप में आधुनिक काल के आरंभ में क्यों जड़ जमाई और उसके बाद ही उसकी उन्नति क्यों हुई, जबकि अधिकतर इतिहासकार भले ही उनके सैद्धांतिक रुझान और पूर्वाग्रह कुछ भी हों, इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक विज्ञान का उदय पुनर्जागरण, धर्म सुधार, व्यापार की महान उन्नति एवं पूंजीवाद के विकास के साथ साथ हुआ। तथापि यह पता लगाना कठिन है कि एक ओर तो इन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और दूसरी ओर वैज्ञानिक क्षेत्र में हुई खोजों के बीच सही सही क्या संबंध थे, वैज्ञानिक क्रांति के क्या कारण थे। इस संबंध में लंबे अरसे तक विवाद चलता रहा। एक विचारधारा यह है कि विज्ञान की प्रगति स्वतः प्रेरित थी, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार यह प्रगति धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया से प्रेरित थी। विज्ञान के अधिकतर इतिहासकार पहली विचारधारा के पक्षधर हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक घटना का अलग अलग विवेचन करने की पद्धति पर ध्यान केंद्रित करके वे व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ की ओर संकेत किए बिना ही आधुनिक विज्ञान के उदय का विवरण देने में सफल हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के सभी सामान्य से इतिहास लगभग अनिवार्य रूप से इसी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। विज्ञान के इतिहासकार सामान्यतः इस बात को स्वीकार नहीं करते कि विज्ञान का अन्य घटनाओं से अभिन्न संबंध था। आधुनिक विज्ञान के स्वतः प्रेरित होने की बात प्रतिपादित करने के लिए इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया गया है कि आधुनिक विज्ञान और प्रविधि एक दूसरे से अत्यधिक प्रभावित थे। चार्ल्स वेबस्टर ने इस दृष्टिकोण को सीमित इतिहास की संज्ञा दी है। वेबस्टर का कहना है कि सभी प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक आंदोलनों को विज्ञान के इतिहास में शामिल न करने से विज्ञान के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण विकृत होगा। इससे वैज्ञानिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है। अन्य इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया है कि विज्ञान के उद्गम में व्यक्तिगत प्रतिभा की निर्णायक भूमिका थी। इन इतिहासकारों में बटरफील्ड, कैसलर तथा कोयरे के नाम उल्लेखनीय हैं। बटरफील्ड बराबर इस बात पर जोर देता रहा था कि सोचने की नई टोपी पहनना, अर्थात नई प्रणाली से सोचना, शिक्षा तथा आदतों और व्यावहारिक अनुभव के बंधनों को तोड़ना कितना कठिन है। उसके अनुसार वैज्ञानिक क्रांति की व्याख्या करना असंभव है और उसकी पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बटरफील्ड ने ऐसी कई जटिल परिस्थितियों का उल्लेख किया है जो केवल पश्चिमी यूरोप में ही वर्तमान थी, जैसे मध्य वर्ग का उदय और प्रविधि का प्रभाव। लेकिन बटरफील्ड ने इस पृष्ठभूमि का केवल उल्लेख भर ही किया है। कैसलर की पुस्तक में मुख्यतः तीन विचारकों का रेखाचित्र अंकित किया गया है जिन्होंने प्रतिभा, अंतर्दृष्टि, भ्रांति एवं त्रुटियों के फलस्वरूप उपलब्धियां अर्जित की थीं और जो गलत रास्तों पर चलकर सही नतीजे पर पहुँचे थे। एलेक्जेंडर कोयरे के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति का श्रेय काफ़ी हद तक केवल स्वयं गैलीलियो को ही जाता है। अपने अपने तरीके से इन तीनों इतिहासकारों ने इतिहास की इन महान विभूति का पक्ष लिया है। उनकी राय में अद्वितीय अंतर्दृष्टि की ही भूमिका निर्णायक रही है। इस दृष्टिकोण का एक और विकल्प काम्बी और क्लेगेट जैसे इतिहासकारों की रचनाओं में मिलता है। ये इतिहासकार विज्ञान के विकासशील पक्ष पर जोर देते हैं और इस बात को मानते हैं कि गैलीलियो और उसके साथी अपने पूर्ववर्ती प्राचीन एवं मध्ययुगीन चिंतकों के ऋणी हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उठाए गए कदम उतने चमत्कारी नहीं थे जितने कि आरंभ में दिखाई पड़े थे। इन दोनों एवं कई अन्य इतिहासकारों की राय में अरस्तु विज्ञान की प्रगति में एक बाधा न होकर उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। आधुनिक विचारक मध्ययुगीन चिंतकों द्वारा धैर्यपूर्वक किए गए कार्य के फलस्वरूप ही सफल हुए। भले ही मध्ययुगीन चिंतकों को अपने श्रम का समुचित पुरस्कार न मिला हो, इस सब के विपरीत 1930 से आरंभ होने वाले दशक में अनेक मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी लेखकों ने विज्ञान के सामाजिक विश्लेषण को पसंद किया। बोरिस हेसेन के अनुसार आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति नए बुर्जुआ वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु हुई। उसने न्यूटन के प्रिंसिपिया में वर्णित सबसे अमूर्त साध्यों का संबंध 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग की प्राविधिक आवश्यकताओं से जोड़ा। एडलर जिलसेल की राय में विभिन्न वर्गों के बीच की सीमाएं प्राचीन विद्वानों और शिल्पकारों के बीच विचारों के आदान प्रदान को प्राचीन काल से ही बाधित करती थी। इन सीमाओं के नाटकीय ढंग से हट जाने के फलस्वरूप इंद्रियानुभववाद और युक्तिवाद का परस्पर मिश्रण हुआ और पुनर्जागरण के बाद इटली में एक नए प्रकार के विज्ञान का जन्म हुआ। जिलसेल के इस विचार के अनुसार जब पुनर्जागरण काल में चित्रशाला और शिल्पशाला का फलप्रद संयोग हुआ तभी वैज्ञानिक प्रगति संभव हुई। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने एंगेल्स के उस कथन का अनुसरण किया है जो उसके द्वारा 1894 में स्टार्केनबर्ग को लिखित एक पत्र में मिलता है। एंगेल्स ने लिखा है कि समाज की एक प्राविधिक आवश्यकता विज्ञान की प्रगति में जितनी सहायक होती है उतने 10 विश्वविद्यालय भी नहीं होते। एंगेल्स ने यह भी कहा है कि इतिहास के भौतिकवादी निर्वचन में अनुपम प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है। वेकन, गिलबर्ट और हार्वे के बारे में एक नया दृष्टिकोण इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वे आर्थिक एवं तकनीकी विकास पर निर्भर थे अथवा उनका संबंध पुनर्जागरण काल के जादू टोना संबंधी परंपराओं से था। पेगेल ने यह सिद्ध किया कि हार्वे किस प्रकार पुनर्जागरण काल की कतिपय मान्यताओं का ऋणी था। हार्वे के विचारों के विकास के बारे में लिखते हुए क्रिस्टोफर हिल ने हमें सावधान किया है कि हमें किसी विचारक के विचारों को उसके सामाजिक वातावरण से अलग करके नहीं देखना चाहिए। हार्वे पहले इस बात पर जोर देता था कि शरीर में प्रमुख स्थान हृदय का है। अपने बाद के लेखों में उसने यह विचार बदल दिया और रक्त को प्रधानता दी। हेल के अनुसार उसके विचारों में यह परिवर्तन गणतंत्र में रहने के अनुभव के कारण आया। उसके लेख में हार्वे के सांसदों से दिलचस्प संबंधों और उस समय प्रचलित धर्म विरोधी नस्सरवाद पर भी रोशनी डाली गई है। हार्वे के बारे में हिल के निर्वचन की कई प्रमुख इतिहासकारों ने आलोचना की है जिनमें हार्वे के प्रमुख शिष्य पेगेल और व्हाइट रिच भी शामिल हैं। इनका कहना है कि हार्वे के विचारों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया था। पेगेल का कहना है कि हार्वे सांसद न होकर एक राजभक्त था।